يا الذين آمنوا أي إيمان والو إن كثيرا من الأحبار والرحبان اب پھر ان کے احبار اور رحبان کی بات آئی بہت سارے ان کے احبار سارے نہیں مگر بہت سارے ان کے احبار اور ان کے رحبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ان لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے ایک حق طریقہ بھی ہے جیسے آپ نے کوئی چیز خریدی آپ نے اپنے پیسے اس کو دیے وہ اس کے لیے جائز ہیں آپ نے اسے چیز لی تھی لیکن یہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں یہ کیسے باطل طریقے سے کھاتے ہیں کیا طریقے تھے ان کے لوگوں کے مال کھانے کے دیکھیں بہت سارے انہوں نے طریقے نکال رکھے تھے پہلے تو یہ طریقہ کہ فتوے غلط دیتے تھے اپنے من مانے فتوے دے دیتے تھے ظاہر ہے جس کو فتوا دے رہے ہیں اس کی مرضی کا دے دیں گے تو وہ تو کھلائے گا پلائے گا نا تعویذ گنڈے بنا کے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے وہ بھی بیچتے تھے نجات نامے بھیجتے تھے کہ تیری نجات ہے نا بھائی تو تیری معافی ہو گئی تو وہ بھی پیسوں پہ بکتے تھے اب بخشش کا بھی سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرے کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے یہ میں لکھ کے دوں گا اب یہ میں لکھ کے دوں گا یہ اتنے ڈالر کا خود سوچیں اسی طرح جنت کے پروانے لکھ کے دیتے تھے تو ان کے طریقے ایسے تھے کہ جس سے یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے یہ لوگوں کے مال کو جو ان کے لیے جائز نہیں تھا اس طرح سے کرنا اس کے نذرانے لیتے تھے آپ دیکھیں اسی طرح کسی کی شادی کرانا کسی کے جنازے پڑھانا کسی کو جو بھی مذہبی کتاب ہے اس کی تعلیم دینا اس کے اوپر بڑے بڑے مال بٹورنا اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا صرف مال حاصل کرنے کے لیے تو سوچتی ہوں وہ تو کیا ان کی باتیں ہیں یہ تو ایسے لگتا ہے ہماری باتیں اور واقعی ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں یا یو لدینہ آمنو کہہ کے کہ مسلمان بھی اس پہ اس چیز کے اندر وہ بھی نہ ملوث ہو جائیں کہیں وہ بھی ایسے کام نہ کرنے لگے ہیں ایمان والوں دیکھو ان کا کیا حال ہوا ان میں سے بہت ساروں نے یہ کیا ہے کیوں ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہمیں کیوں بتایا کہ تم نہ کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یقیناً اپنے سے پہلوں کی روش پر چل پڑو گے ان کی مشابہت کرو گے ذرا بھی فرق نہیں رہے گا لوگوں نے پوچھا یہود و نصارا کی آپ نے فرمایا ہاں اور کس کی ان کی تو یعنی ان کی جیسی باتیں اور ان کے جیسے کاموں سے بچنا اس لیے کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے تھے غصب کرتے تھے کیونکہ یہ بڑی ایک پوزیشن ہوتی تھی نا یعنی بڑے عالم ہیں آج بھی دیکھیں پادری جو کتنی بڑی اس کی عزت ہے تو ان سے لوگوں سے یہ تحفے لیتے ہدیے لیتے بڑی پوزیشنز لیتے کئی چیزیں تھیں جو بغیر ان پیسے کے وہ ہو نہیں سکتی تھی تو ان کے اوپر پیسے بڑھ توڑتے تھے تو ان کا یہ حال ہو چکا تھا اسی کے اوپر بتایا گیا کہ دیکھو لوگوں کے ناجائز مال کھاتے تھے باطل طریقے سے دھوکے فریب کے ساتھ ہڑپ کرتے تھے لوگوں کے مال وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہوا نا جب مال خود کھا لیا تو اللہ کے راستے میں دینے کی تو بات نہیں پھر تو بس خود ہی اپنی تجوریاں بھری نا دیکھیں جب دین مذہب جو ہے نا ایک دکانداری بن جائے نا تجارت یا پیشہ بن جائے یا ایک دکانداری بن جائے تو پھر یہی ہوتا ہے پھر تو ظاہر ہی بات ہے رشوتیں بھی لیتے تھے یہ لوگ ایکسپلوئٹ کرتے تھے لوگوں کو جھوٹی کہانیاں پھیلاتے تھے ان کے اندر کہ بھئی یہ ایسے اور ایسے اور اس کے بعد پیسے لے لیتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں یہ جو آپ کے گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ یا یہ جو دم کرنے والے یا یہ جو تعویذ لکھنے والے یا یہ جو سب یہ کیا کر رہے ہیں اتنی بڑی بڑی فیسیں اپنی رکھی ہوئی ہیں دکان ہی ہو گئی نا اور کہنے کو یہ روحبان ہے جی بڑے درویش ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی وہ تو ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے اور بڑے علماء ہیں بڑے ایسے ہیں پھر اس کے بعد دیکھو کہ جنازہ پڑھانے کا بھی وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے نہیں ہیں تو ہم نہیں جنازہ پڑھا سکتے جاؤ کسی اور سے پڑھاؤ ہم نہیں نکاح کر سکتے جاؤ کہیں اور तो ये लोग फिर अल्लाह के रास्ते से भी लोगों को बदजन कर देते हैं ना, रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। लोग फिर कहते हैं जी इनके पास क्या जाना, ये तो सिर्फ पैसा ही मांगते रहते हैं। तो ये गद्दी नशीनों का भी ये हाल है, इतना तरस आता है बार दफा देखें कि उनके वहां पे मिजारों पे इतने गरीब लोग जिनकी हालत बता रही होती है कि पता नहीं इनके पास तो कुछ खाने को भी है या नहीं, लेकिन उनके पास भी जो भी मेहनत मजदूरी करके आता है वो इनके उसमें डाल देते हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं लोग, उसमें इतने पैसे डाले हैं, खुद गद्दियों पे बैठे हुए हैं, खुद बाहर के मुल्कों के टूर कर रहे हैं और इन गरीब लोगों से पैसा चूस रहे हैं। सारा बिजनेस है ना उनका। फिर देखें आप हमारे मुल्कों में तो बहुत ही ये हाल है कि किसी को फौत होता है वो 40 दिन की वो अपना मेन्यू लिख के भेज देता है अपने मौलवी साहब जो मस्जिद के होते हैं कि ये आपका सब खाना भेजते रहेंगे, जो मैं रातें बनाई हुई है, जो मैं रात को हर जो मेरा आप बैठ के खाना खा रहे हैं। कि किस वजह से, ये कहां से है, आप लोगों के माल बटोर रहे। والذين يكنزون الذهب والفضة, और वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी, और इन्होंने इसी तरह लोगों से माल बटोर बटोर के इतना जमा कर लिया हुआ था कि बस उड़ाते थे फिर उसको, यानी इतना उनके पास सोना चांदी जमा हो गया था। जाहिर है पोजीशन है, वो लोग भी देते हैं आके, ये अलग बात है। देखिए एक बात को समझना चाहिए यहाँ पे, एक एक्सट्रीम वो है कि आपके जो उलमा हैं या आपके जो इस तरह के पढ़ाने वाले हैं वो बेचारे जाहिर है दीन का काम कर रहे हैं तो उनके पास तो कोई वक्त नहीं है कि वो जाके जॉब्स करें या कोई अपना बिजनेस करें। तो अब वो अगर इमाम है मस्जिद के तो अब आप उनको बिल्कुल ही ऐसी हालत में छोड़ दें कि पहनने को जूता ना हो और ढंग के कपड़े भी ना पहने हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी ने बताया था, मैंने कहा कि सऊदी अरब में जो वहां के इमाम होते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे हम उनको समझते हैं कि ये तो पता नहीं फकीर है, ये तो हमारे पीछे भागे, वहां पे लोग उनके पीछे भागते, उनकी इतनी शान और शौकत होती है, इतनी उनकी इज्जत होती है, वो भी अच्छे लिबास में और अच्छी गाड़ी में और अच्छे रहन सहन के साथ होते हैं, और बल्कि वो लोगों पे खर्च करते हैं, उनको खानों पे बुलाते हैं, उनकी यानी आवभगत करते हैं, इतना उनके पास होता है। तो एक ये एक्सट्रीम है कि बिल्कुल ही उनको ऐसे छोड़ दिया जाए कि उनकी कोई इज्जत ही माशरे में ना हो रहे और हर कोई उनको बस अपना नौकर समझे और डांट के भेज दे कि ये क्या, ये तो हमारी नौकरी करते हैं और इनके पास क्या है और ये तो हर बस मांगने वाले कोई फकीर है, ये भी गलत बात है। दूसरी तरफ इनकी जो ये हालत है ये भी गलत है, क्या ना, तो उनकी भी देखें, वो जो सफेद पोशी से रह रहे हैं उनके बारे में सूरह बकरा में हमने आयत पढ़ी थी, सूरह बकरा जो खत्म होने वाली, तो वहां पे उनके बारे में भी आया कि वो बेचारे अपनी जरूरत किसी को बताते नहीं है और उनकी चेहरों से आप उनको पहचान लेते हो। तो उनको ऊपर खर्च करना वो ठीक है, लेकिन ऐसे ही लोग अगर इसको धंधा बना दे, इसको एक कारोबार बना ले, लोगों से लाखों ले रहे हैं और फिर जमा करते जा रहे हैं और फिर अपनी शादियों पर उड़ा रहे हैं और फिर अपने ऐसी ऐसी सगाने अपने बना लिए और वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह, और नहीं वो खर्च करते उसको अल्लाह के रास्ते में, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरी दो उनको दर्दनाक अज़ाब की। तो ये फिर यहाँ गलत हो जाता है, सही है। और फिर बताया गया अब ये वाली आयत उसके लिए है कि जो खजाने जमा करता है और उसमें से अल्लाह के रास्ते में नहीं देता, यानी ना ज़कात दी ना कोई सदकात किए, बस जमा करते गए, अगर ज़कात दी जाए तो फिर अजाब अलीम का नहीं है, ठीक है। तो फबशिर हम का मतलब ये उनके लिए एक तंज है कि अब खुशखबरी तो अच्छी चीज की होती है, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। तो माल जमा करते रहना अगर उसके अंदर से हक नहीं दिया गरीबों का मिस्कीनों का और ज़कात नहीं निकाली तो वही माल इंसान के लिए अजाब का बाइस कयामत के दिन बन जाएगा। इसी बारे में हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया था, ये मुस्नद अब्दुर रज़ाक में, पहले ये हदीस बता देती हूँ आपको, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सोने चांदी वालों के लिए हलाकत है। तीन मर्तबा आपका यही फरमान सुन के सहाबा पे तो बड़ा मुश्किल गुजरा और उन्होंने सवाल किया फिर हम किस किस्म का माल रखें। हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हालत बयान करके यही सवाल किया तो आपने फरमाया जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल और दीन के कामों में मदद देने वाली बीवी, यानी ये इन खजानों से बेहतर है, इन जमा करने से बेहतर है। तो हजरत उमर यही फरमाते हैं कि बगैर जकात के माल से इस मालदार को दागा जाएगा, उसके लिए बहुत सख्त सजा है। यानी जो इंसान माल तो जमा करता रहता है लेकिन उसमें से किसी का हिस्सा नहीं निकालता जो जिनके हक है उसके ऊपर, जैसे रिश्तेदारों का हक है, वालदैन का हक है, बीवी बच्चों का हक है, गरीबों मिस्कीनों का हक है। मुस्नद अहमद में है कि सोने चांदी की मुजम्मत की ये आयत जब उतरी और सहाबा ने आपस में चर्चा किया तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछता हूँ, अपनी सवारी तेज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। और रिवायत में है कि सहाबा ने कहा फिर हम अपनी औलादों के लिए क्या छोड़ जाएं, यानी क्या फिर हम सारा दे दें, इसको कभी जमा ना करें, कुछ विरासत ना हो। इसमें है कि हज़रत उमर के पीछे ही पीछे हज़रत सुबान भी थे तो आपने हज़रत उमर के सवाल पे फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़कात इसीलिए मुकर्रर फरमाई कि बाद का माल पाक हो जाए। मीराज के मुकर्रर करने का जिक्र किया जा रहा है कि जमा करने में कोई हर्ज नहीं है। हज़रत उमर ये सुनकर मारे खुशी के तकबीरें कहने लगे तो आपने फरमाया लो और सुनो, मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन खजाना ना बताऊं। नेक औरत जब उसका खामिद उसकी तरफ नजर डाले तो वो उसको खुश कर दे और जब हुक्म दे तो फौरन हुक्म की तामील करे, जब वो घर में नहीं हो तो उसकी इज्जत की हिफाजत करें, ये इस खजाने से भी ज्यादा बेहतर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया कि ये इन चीजों, जो लोग खजानों को जमा करते हैं जिसके पास ये है वो इस खजाने से ज्यादा अमीर है, जिसके पास ऐसी बीवी हो या जिसके पास जिक्र करने वाली जुबान और शुक्र करने वाला दिल हो।